प्रकरण 5 वृषाली। स्त्री का जीवन भक्ति भाव से और श्रद्धा से पति के चरणों पर समर्पित किया हुआ एक कमल पुष्प होता है। पति का सुख ही उसका सुख होता है। पति के जीवन के आधे अंग को संवारने के पवित्र शपथ व सप्तपदी के मंगलमय अवसर पर अग्नि नारायण को साक्षी मानकर लिया करती है, इसीलिए उसको अर्धांगी कहा जाता है। मैं अपने पति को सुख के शिखर पर रखने के लिए अहर्निश प्रयत्न कर रही थी, क्योंकि उनका जीवन जिस कष्टमय मार्ग से चलता आ रहा था उस संपूर्ण मार्ग के बारे में शोण जी ने मुझे अनेक बार बता दिया था। मैं अत्यंत भाग्यशाली थी क्योंकि मेरे पति का रूप ऐसा था कि कोई भी रूपवती स्त्री मुझसे ईर्ष्या करने लगे। रूप से भी अधिक विशाल उनका मन था। शायद उनका जन्म अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को केवल प्रेम देने के लिए ही हुआ था। अपने अनिंद्य रूप पर उनको रत्ती भर भी अभिमान नहीं था। बातें करते समय वे भूलकर भी कभी अपने दिव्य कुंडलों या कवच का उल्लेख नहीं करते थे। इतने सामर्थ्यवान पुरुष और एक देश के राजा होकर भी जब वे अपने माता पिता के पैरों पर स्वयं चंदन मिश्रित उपटन करते समय तब मेरा हृदय अभिमान से भर जाता था। अपने सुंदर और सद्गुणी पति को देखकर किसी स्त्री को अभिमान नहीं होगा। किसी विशाल वृक्ष पर आश्रित लड़का का जीवन जैसे निश्चिंत और सुखपूर्ण होता है, वैसे ही अपने पति के साथ मेरा जीवन सुखमय था। मेरी सास और ससुर को एकदम देवता तुल्य थे। मैं उनकी पुत्र वधु हूँ यह मुझको कभी लगा ही नहीं। मुझको भी अपनी कन्या की तरह ही मानते आए थे। सोण जी तो हास्य का कलकल करता हुआ झरना ही थे। वे औरों से तो बहुत कम ही बातें करते थे, परंतु मुझसे बातें करते समय उनका मन ही नहीं भरता था। मेरा एक भी दिन बिना कभी ऐसा नहीं बीता जब मैंने अपने प्रेमपूर्ण पुकार भाभी भाभी न सुनी हो। राजनगर और राजप्रसाद में घटित होने वाली प्रत्येक घटना वे सबसे पहले मुझे को बताते थे। मुझको बहुत ही आश्चर्य होता था कि उनके विवाह के संबंध में कोई चर्चा क्यों नहीं करता था। मैं ससुर जी से कहती भी थी, अपने ज्येष्ठ पुत्र पर ही आपका प्रेम अधिक दिखाई देता है, नहीं तो सोण जी का विवाह भी आपने अब तक कर लिया होता। वे हंसकर इतना ही कहते, हमको तो कभी यह लगता ही नहीं कि यह काम हमारा है। हमारा कर्तव्य तो कर्ण का विवाह करना भर था, इसी में संतोष था हमें। अब कर्ण चाहे तो सोण का विवाह करे या उसको यूं ही रखे। मैं कभी अवसर पाकर सोण जी के विवाह की चर्चा अपने पतिदेव के सम्मुख करती। वे कहते, वृषाली, मैंने सुना है कि स्त्रियां बहुत ईर्ष्यालु होती हैं। तुम सोण की पत्नी से द्वेष नहीं करोगी? इसका क्या प्रमाण है? वह मुझसे सदैव ऐसे ही व्यंग भरी बातें किया करते थे, परंतु उन बातों के पीछे छिपे हुए प्रेम को मैं जानती थी, इसीलिए मैं कुछ कहती नहीं थी। मैं तो सोण जी को अपने बड़े भाई की तरह समझती हूँ। भाई की पत्नी से कभी किसी ने द्वेष किया है क्या? वृषाली, व्यर्थ ही नाते का यह घोड़ा मत दौड़ाओ। सच कहूँ, तुम यह चाहती ही नहीं हो कि तुम्हारा पति अन्य लोगों के प्रेम में भी फंसे। सोण का विवाह कर देना चाहिए। ऐसा कहने में तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि सोण के साथ उठने बैठने में मेरा जो समय बीतता है, सोण के विवाह हो जाने के बाद वह सारा का सारा समय तुम्हारे हिस्से में आ जाए। सच है ना? तुम लोग भी कितनी स्वार्थी होती है। मैं उनकी ऐसी बातों से झुंझलाकर दूर हट जाती और गवाह के से गंगा की ओर देखती रहती। वे थोड़ी देर बाद ही मेरे पीछे से आकर मेरे सिर पर हाथ फेरते और कहते, वृषाली, क्रुद्ध हो गई हो क्या तुम? अरे, मेरी समझ में कुछ नहीं आता है। मुझको अब भी यही लगता है कि मेरा सोण अभी गंगा किनारे सीपियाँ इकट्ठी करने वाला। भैया, तुम गरुण की तरह ऊँचे जाओगे क्या? यह पूछने वाला, मेरे रथ के पीछे रोता चिल्लाता हुआ दौड़ने वाला, बिल्ली का बच्चा रथ के नीचे आ न जाए इसलिए दौड़कर तत्परता से उसको उठाने वाला भोला भाला सोण है। मुझको अब भी यह नहीं लगता कि वह बड़ा हो गया है, लेकिन अब मैं विलंब नहीं करूँगा। उसका विवाह मेरे विवाह से भी अधिक धूमधाम से होगा। कितना लंबा तड़गा हो गया है ना, वह है ना? ऐसे अवसर पर सिर उनके पुष्ट कंधों पर रख देने की इच्छा होती। लगता है इस विशाल शरीर में कितना विशाल मन होगा। उनके जीवन में अनेक उलटफेर हुए थे, परंतु अपने भाई की स्मृतियां उन्होंने अपने मन के गर्भगृह में कितनी ताजी बना रखी छोड़ी थी। कदाचित स्वयं सोण जी भी उन घटनाओं को भूल गए होंगे, परंतु उन्होंने बड़े प्रेम से उनको ज्यों के त्यों सजोज कर रखा था। सभी अपनों को इस प्रकार श्रद्धापूर्वक अपनाते हुए मुझ पर प्राणाधिक प्रेम करने वाला पति मुझे मिला था। मेरा जन्म जन्मांतरों का पुण्य फल सफल हो गया। उनकी पत्नी होने के कारण केवल उनके कुटुंब के व्यक्ति ही मुझ पर ममता की वर्षा करते हों ऐसी बात नहीं थी, बल्कि महारानी गांधारी देवी, युवराज्य दुशला देवी और राजमाता कुंती देवी, इन सबका भी मुझ पर अमित स्नेह था। मैं एक सूत कन्या थी, परंतु मुझको राजनगरी का जीवन प्राप्त हो गया था। यह सब मुझको अपने पतिदेव के कारण ही प्राप्त हुआ था, इसीलिए उनके सुख के लिए मैं दिन रात एक कर रही थी। किसी भी दुखदायी घटना को लेकर वे मुझसे कभी नहीं करते थे। पिछली बार अखाड़े में कृपाचार्य युवराज भीम ने उनका जो अपमान किया था, वह उन्होंने मुझको आज तक नहीं बताया। औरों के लिए अपने मन को कष्ट पहुंचाने की बात वे कभी सोच भी नहीं सकते थे, परंतु अपने उनको दुख देने वाली कोई घटना घटती तो सोण जी वह सबसे पहले मुझको ही बताते। रात्रि प्रेम में डूबे हुए मुझसे कहते, भाभी, भैया चाहे कितने संकटों में फंस जाएं, क्यों न हो, वे तुम्हें कभी कुछ भी नहीं बताएंगे, इसीलिए मैं यह सब बातें तुम्हें बताता हूँ। उनके मन की यातनाएं मुझसे देखी नहीं जाती। छोटे में बड़ी बात कैसे कहूँ यह सोचकर मैं उनके सामने कुछ नहीं कह पाता हूँ। तुम ही संभालो भैया को। पांचालों के युवरागी के स्वयंवर में वे अपने अपमान को भी सहज बचा गए थे। मुझको दुख होगा यह सोचकर बताया ही नहीं था, लेकिन अंत में देवर्षोण जी ने वह मुझको बता ही दिया। स्वयंवर में घटित समस्त वृत्तांत जब मुझको विदित हुआ, तब द्रौपदी कही जाने वाले उस निर्मम और अविवेकी युवरागी पर मुझे बड़ा क्रोध आया, लेकिन पहली बार ही। बाद में तो मुझे उस पर दया ही है। अमृत कुंभ उसके हाथों के पास पहुंच चुका था, लेकिन उस अविचारी स्त्री ने कुल के घमंड में आकर उसको पैरों से ठुकरा दिया था। क्रीट में लगाने योग्य सुगंधित स्वर्ण पुष्प उसने पैरों तले रौंद दिए थे। समस्त राजाओं के सामने उसने मेरे स्वामी पति का घोर अक्षम्य अपमान किया था, मेरे सुंदर पुत्र की बलि ले ली थी। जब अंगराज पंचाल देश से लौटे, तब उनकी आरती उतारते हुए चिंतातुर होकर मैंने उनसे पूछा, हमारा सुदामन कहाँ है? मेरी आंखों में गहराई तक देखते हुए उनका कंठ अवरुद्ध हो गया था। उनके नीलमणि नेत्रों से निकलते हुए आंसुओं की दो बूंदें उनके रक्तिम कपोलों पर से सरकती हुई मेरे पैरों पर गिरी। मुझके वे स्फुलिंग की तरह धड़कती हुई लगी। मुख मोड़ कर नैनों के छोरों को उत्तरी से पूछते हुए वे बोले, सुदामन चला गया वृषो। उसको निहत कर द्रौपदी के कंठ में वरमाला डालने वाला अर्जुन अब सुदामन के पिता के बाण से अंतिम निःश्वास छोड़ने वाला है। मेरे हाथ में लगी आरती की थाली से मुझको एक पुष्प प्रतिज्ञा के रूप में उठा लिया। सुदामन के वध का समाचार सुनकर मेरे हाथ से थाली छूट कर गिर पड़ी। दो, स्त्री को अपना दुख पचाकर औरों का दुख हल्का करना पड़ता है। अपने पति की मानसिक व्यथा कैसे दूर की जाए, यह बात किसी भी सुज्ञ स्त्री को कभी सिखाता नहीं है। मैंने ध्यानपूर्वक देखा कि स्वयंवर का शल्य महाराज के मन में कसक कर रहा था। किसी भी प्रकार उनका मन नहीं लगता था। घंटे तक वे विचारों में डूबे रहते हैं। एक बार तीसरे प्रहर भोजन के उपरांत वे ऐसे ही अकेले बैठे हुए थे। मैं अचानक ही उनके सामने आकर खड़ी हो गई। मुझको देखते हुए बलात् हंसते हुए बोले, वृषाली तुम? कुछ लोग झूठ बोलते नहीं हैं, परंतु झूठी हंसी हंसते अवश्य हैं, यह मैं आज जान गई। मैंने कहा, कौन झूठी हंसी हंसता है? तुमको देखकर हंसने वाला झूठी हंसी कभी नहीं हंसेगा। आप ही झूठी हंसी हंस रहे हैं, मुझको अपने दुख छिपाते हैं। कैसा दुख? सुदामन का और स्वयंवर का, जिसने आपके मन को विह्वल कर दिया है उस अपमान का। वृषाली तुम सच कह रही हो, परंतु यह सब तुमसे किसने कहा? देवर्षोण जी ने। लेकिन मैं यह पूछती हूँ कि इसमें मन को कितना विह्वल कर देने वाली क्या बात है? यह जानने के लिए पुरुष का और विशेष रूप से योद्धा का जन्म लेना पड़ता है। बिना इसका यह ज्ञान नहीं होता कि अपमान का शल्य मन में कैसा चुभता है। वृषाली सचमुच क्या मैं इतना हीन और क्षुद्र हूँ? सदा की भांति गवाच से दूर क्षितिज की ओर देखते हुए वे कह रहे थे। नहीं, आपको हीन कहने वाले सभी लोग एक दिन पश्चाताप करेंगे, यह बात मेरा मन बार बार मुझसे कह रहा है। तुमसे एक प्रश्न करूं, सच सच बताना, बताओगी? मैं आपसे कभी असत्य नहीं बोलूंगी भी नहीं, आप मेरे परमेश्वर हैं। तुम्हारे मन में कभी यह बात नहीं आई कि क्या अपना पति यदि सुतपुत्र न होता तो बहुत अच्छा हुआ होता? क्यों, मैं क्यों यह सोचूं? आपका यह प्रश्न तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आप में कमी ही क्या है? तो फिर मुझे को इतना क्रोध क्यों आता है सुतपुत्र शब्द पर? कभी कभी संसार की दुष्टता देखकर आपका मन विचित्र हो जाता होगा और तब फिर आपको वैसा लगता होगा, लेकिन आप औरों की क्रूरता पर विचार तक न करें, क्योंकि हम दोनों का जीवन। क्यों, क्या हुआ वैशाली, रुक क्यों गई? हम दोनों का जीवन फिर क्या? अब वह हम दोनों का नहीं रहा, उसमें हिस्सा लेने वाला तीसरा प्राणी आने वाला है। आप जल्दी ही पुनः पिता बनने वाले। क्या क्या कह रहे हो वैशाली? मैं जल्दी पिता बनूंगा, हमारे पुत्र होगा। वैशाली यह बात तो मुझको कितने विलंब से बता रही हो। आगे बढ़कर उन्होंने मेरा मुख अपने हाथों में थाम लिया। मैंने बहुत प्रयत्न किया, परंतु मेरी आंखें ऊपर उठती ही न थी। अंत में हाथों को इधर उधर धीरे धीरे हिलाते हुए शांत स्वर में बोले, वृषु ऊपर मेरी ओर देख तो सही। मैंने उनकी नीली कानों और कुंडलों की ओर संकुचित होते गए शांत नेत्रों की ओर देखा। मुझको द्रौपदी की याद आई। सचमुच उसने मुझ पर बड़ी कृपा की थी। उसने यदि इनको मेरी तरह निकट से देख लिया होता तो निश्चय ही उसने इनको कभी हस्तिनापुर लौटने ही न दिया होता। गंभीरता से मेरी ओर देखते हुए वे बोले, वृषु पुत्र होगा या कन्या, आपकी क्या इच्छा है? कन्या, तुम्हारी तरह बड़ी बड़ी आंखों वाली। पुत्र, आपकी तरह कुंडलधारी। मैंने उनके हाथों से मुख छुड़ाते हुए कहा, फिर तो तुमको मेरा ध्यान ही नहीं रहेगा। सुनते हैं कि पुत्र हो जाने पर स्त्री का पति पर प्रेम कम हो जाता है। आपके प्रति मेरे प्रेम को अब केवल एक ही घटना हटा सकती है, वह है मृत्यु। वृषाली, मेरे लिए कैसे कैसे स्वर्गीय उपहार लेकर आई हो तुम। उनकी पानीदार आंखें मेरे हृदय सरोवर में डुबकियां लगा रही थी। स्वर्ग के साक्षात देव को भी भला कभी स्वर्गीय उपहार की आवश्यकता होती है? मैं उनकी मनोवृत्ति को प्रसन्न कर सकी यह सोचकर भी मुझको बहुत आनंद हो रहा था। जब से स्वयंवर से आए थे तब से पहली बार वे इतने मुक्त मन से मुझसे बातें कर रहे थे, परंतु क्षण भर बाद ही वे फिर चुप हो गए। मुझको वही छोड़कर अकेले ही गवाक्ष के पास जाकर बहुत दूर देखने लगे। क्यों, क्या हुआ? मैंने भयभीत होकर उनसे पूछा। कुछ नहीं, तुम जाओ। वह मुझसे फिर कुछ छिपाने लगे। आप मुझको सदैव इसी प्रकार दूर रखना रखकर ही व्यवहार करते रहेंगे क्या? नहीं वृषाली, लेकिन सभी बातें बताने योग्य नहीं होती, समझने योग्य भी नहीं होती, क्योंकि वे कटु होती हैं। कोई भी कटु बात बताने योग्य क्यों न हो, आपके मुख से निकलने पर वो मुझको अमृत जैसी मधुर ही लगेगी। मैंने भी दृढ़ता से कहा, नहीं मैं हट नहीं करूंगी, मुझको बताइए ही, परंतु पत्नी पति की अर्धांगिनी होते यह व्यर्थ है, यह सोचकर ही मैं यहाँ से जाऊँगी। यह बात नहीं है, सहन कर सकोगी? सुनो, हमको पुत्र होगा यह सोचकर तुम आनंद से फूली नहीं समा रही। मैं भी यह सुनकर क्षण भर के लिए अपना दुख भूल गया, लेकिन इस समाचार से मेरे पहले के दुख को और अधिक बढ़ाया है। ऐसी बात क्यों करते हैं आप? आपको पुत्र होगा यह सुखद समाचार दुख कैसे बढ़ा देगा? हाँ वृषाली, तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला पुत्र इस राजभवन में कण के पुत्र के रूप में ही बड़ा होगा, लेकिन कल जब वह समाज में घूमेगा तब सभी लोग सूत पुत्र कहकर ही उसको चिढ़ाएंगे। जिस धैर्य से उसके पिता ने कटु सत्य जीवन भर सहन किया है, उसी धैर्य से वह भी सहन कर लेगा, यह नहीं कहा जा सकता। छी वृषाली, कर्ण के पराक्रम के नगाड़े व्यर्थ हैं। समाज की रूढ़ी के समक्ष व्यक्ति का जीवन, उद्देश्य, आशा, आकांक्षा, सब कुछ क्या मिट्टी ही नहीं है? लेकिन जब वह सुपुत्र होगा ही, तब फिर लोग वैसा कहेंगे तो इसमें अपमान की क्या बात है? वृषाली जाओ, तुम कर्ण के साथ रहकर भी तुम उसको अच्छी तरह पहचान नहीं पाए। नहीं, आप जो समझ रहे हैं वह बात नहीं, लेकिन आप भी अपने कुल पर अपमान क्यों नहीं करते? आप उस सबको डंके की चोट पर क्यों नहीं कह देते हैं कि सुपुत्र ही हूँ, मेरा पुत्र और उनके वंशज ये सब सुपुत्र ही रहेंगे? वृषाली, इसके लिए विगत 40 वर्षों से मैं अपने मन को धागे एकत्रित करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन उसे मैं कभी सफल नहीं हो पाया। मुझको इस बात का अभिमान होना चाहिए कि मैं सूत पुत्र हूँ, लेकिन वह होता नहीं। तो फिर मैं सूत कन्या हूँ, आपकी पत्नी हूँ, यह सत्य भी आपको कभी आनंदित नहीं करता होगा, यही समझना चाहिए? नहीं वृषाली, तुम शोण, माता पिताजी और दुर्योधन, इनके प्रेम पर मुझको गर्व है। तुम्हारे संबंध में यदि कुछ कहने का अवसर कभी प्राप्त हुआ तो मैं कहूँगा कि हवाक्ष से तत्क्षण पीछे मुड़े। क्या कहेंगे आप? जो आज तक कभी तुमसे कभी कहा ही नहीं, वही बात। यदि विशाली मुझको पत्नी के रूप में मिले तो मैं एक ही क्या 10 जन्मों में भी सुतपुत्र होना ही चाहूँगा। उनके कथन से मैं भावाभिश्रुतित हो गई। उनके मन की थाह पाना निश्चय असंभव है। आकाशकांत क्या कभी किसी को मिला है? जो संतोष मुझको मिला था वह मेरे लिए असीम था। मैं उनके भवन से बाहर आई, फिर भी एक कसक रह गई थी कि अपने पुत्र का सुतपुत्र के रूप में होने वाला उल्लेख उनको क्यों अच्छा नहीं लगा। 3. पति के साथ मैं सुखी थी। मेरे मन में महाराज दुर्योधन प्रति भी आदर भाव था, क्योंकि उनकी सहायता पर ही मेरे संसार का वट वृक्ष फल फूल रहा था। प्रत्येक अवसर पर उन्होंने मेरे पति का अपने प्राणप्रिय सखा के रूप में उल्लेख किया था। अपने पति के लिए प्रयत्न करने वाले व्यक्ति के प्रति किसी भी स्त्री के मन में आदर भाव होना स्वाभाविक ही। महाराज दुर्योधन के कारण मैं अंगरागी के रूप में अभिमान के साथ हस्तिनापुर में घूम फिर सकी थी, और इसीलिए मुझको एक बात बार बार खटकती थी, वह यह थी कि हमारे विवाह में प्रमुख भूमिका निभाने वाले महाराज दुर्योधन स्वयं अभी अविवाहित ही। विवाह जीवन की पूर्णता है, केवल संपत्ति, पुरुषार्थ और कीर्ति पर ही सारे सुख अवलंबित नहीं होते। मैंने अपने पतिदेव को महाराज दुर्योधन के विवाह के बारे में भी अनेक बार याद दिलाई थी। वैसे वे पांचालों के राज्य में द्रौपदी के स्वयंवर में गए थे, परंतु वहां वे विफल हो गए थे, लेकिन इसीलिए वे जीवन भर अविवाहित तो नहीं रह सकते थे। यह बात मैं अपने पतिदेव को अवसर मिलते ही संकेत से बता देती थी। मुझको उत्तर देते हुए कहते, विशाली वह एक युवराज है, और ये राज हस्तिनापुर के वैभव संपन्न साम्राज्य के अनुरूप राजकन्या ही प्राप्त होनी चाहिए। राजा का विवाह अभिषेक के समान महत्वपूर्ण होता है। मैं अपने भाई सत्यसेन से जानकारी प्राप्त कर अनेक राजकन्याओं के नाम दुर्योधन महाराज के सुझा रही थी, परंतु उनको एक भी पसंद नहीं थे। अंत में एक दिन वे राजसभा से आए, मुझको दासी द्वारा बुलवाकर वे बोले, देखो वृषाली, तुमको दुर्योधन के विवाह की बहुत चिंता थी न, अब वह अवश्य चतुर्भुज हो जाएगा। उन्होंने एक भुज पत्र राया हुआ आमंत्रण मेरे हाथ में दिया। वह आमंत्रण कलिंग देश के राजा चित्रांगद का था। उसने अपनी कन्या भानुमती के स्वयंवर का आयोजन किया था। संबंधित जनों के साथ कलिंग की राजनगरी काशीपुर आने के लिए उस राजा ने विश्व पितामह को विनम्र प्रार्थना की थी, मुझको एक अच्छी सखी मिल जाएगी। मैंने हर्षित होकर कहा, तुम लोग प्रत्येक बात में विशुद्ध व्यवहार ही देखते हो वृषाली, यह केवल स्वयंवर का आमंत्रण है। राजकन्या भानुमति को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ का ढिंढोरा पीटते हुए पांचाली के स्वयंवर से भी अधिक न जाने कितने राजागण काशीपुर में एकत्रित होंगे। भानुमति दुर्योधन को ही मिलेगी, यह कहा नहीं जा सकता। उन्होंने मेरी मति जानने की इच्छा से यूं ही चिंता व्यक्त की, जब आप साथ होंगे तब तो सब कुछ सहज संभव है। पांचाली के स्वयंवर के बाद आप अकेले अर्जुन से एक घड़ी तक क्यों नहीं लड़े नहीं थे? वृषाली, प्रत्येक स्त्री यही समझती है कि उसी का पति कर्तृत्ववान है, तुम भी उसी में से एक हो, परंतु अपने पति को कर्तृत्ववान कहते समय उपेक्षित आपत्ति को तुम भूल जाती हो। कौन सी आपत्ति? तुम्हारे पति का कर्तृत्व देखकर यदि कोई अन्य स्त्री मुझ पर अनुरक्त हो गई तो क्या तुम पर आपत्ति नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। प्रश्न मेरे पति की रुचि का है, उनको वह स्त्री यदि अच्छी लगी तो मैं वाहन के रूप में उसका स्वागत ही करूंगा, वह घटना यदि आपत्ति हो तो भी स्मरणीय होगी। सच सोच रहे हो वृषाली, यह इतना सरल नहीं है। मैं वृषाली हूँ, अंगराज की पत्नी। मैं भी उसी दृढ़ता से उनको उत्तर दिया। मेरे उत्तर पर अत्यधिक प्रसन्न हुए। पास होकर मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर प्रेमपूर्वक बोले, कल मैं युवराज दुर्योधन के साथ कलिंगों के राज में जाऊंगा, तुम तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपना सुदामन ही पुनः तुम्हारे उदर में आ रहा है। मेरे हाथ अपने हाथ में था परंतु मन कलिंगों के राज में चक्कर लगा रहा था। कैसी हो गई है कलिंगों की युवराज्ञी भानुमति और उसका वह राजनगर काशीपुर। 4. दूसरे दिन युवराज दुर्योधन महाराज तथा अन्य संबंधी कलिंगों के काशीपुर नगर की ओर चले गए। मैं उनके सबकी सफलता की कामना कर रही थी। प्रतिदिन नगर में गौरी शंकर के मंदिर में जाकर उनकी सफलता के लिए प्रार्थना करती थी। न जाने क्यों मंदिर जाते समय सदैव मेरी इच्छा होती थी कि राजमाता कुंती देवी द्वारा ही दी हुई नीली अतलसी साड़ी को ही पहनकर जाऊँ। उनकी स्मृति के रूप में मैं उनको प्राणों से भी अधिक संभाल कर रखा था। अपने 5 पुत्रों के साथ हुई दुर्घटना में वर्णावत में जलकर गत प्राण हो गई थी। यह समाचार जिस दिन युवराज की दुशला देवी ने मुझको विदित हुआ था उस दिन एक पेटी में संभाल कर रखी हुई नीली साड़ी को निकाल कर मैं समूह छिपाकर बहुत रोई थी। मुझको सदैव यही प्रतीति होती थी कि यह साड़ी में लपेट कर मानव सात्विक स्नेही और अत्यंत मित्र भाषणी राजमाता ने अपने जीवन का अमूल्य प्रेम ही मुझको दिया था। लेकिन उनके पुत्र अर्जुन ने मेरा एक अमूल्य राजवस्त्र मुझसे छीन लिया था। मैं सुदामन को भूल नहीं सकती थी, अर्जुन को क्षमा नहीं कर सकती थी। उस दिन पांचाली के स्वयंवर में जब यह स्पष्ट हो गया कि पांडव जीवित हैं, तब उस समाचार को लाने वाली दासी को झकझोर कर मैंने सबसे पहले यह जानना चाहा कि राजमाता कुंती देवी सुरक्षित तो है ना। न जाने क्यों मुझको कुंती देवी मंदिर की मूर्ति की तरह सात्विक और पवित्र लगती थी। पांडवों में और मेरे पतिदेव में मतभेद था। विशेष रूप से युवराज अर्जुन से इनकी बिल्कुल नहीं पड़ती थी। मैं युवराज अर्जुन का उल्लेख कर उनसे सदैव कहती, उनसे आपका इतना मतभेद क्यों है? कुरुओं के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में तो आपका कोई संबंध है ही नहीं। वे कहते, राहु के तो चंद्र को अगस्ते हैं, उनका भी चंद्र से संबंध कहाँ होता है? आकाश में गरजने वाली विद्युत का आघात पृथ्वी को विदीर्ण कर देता है, उसका विद्युत से कभी कोई संबंध होता है क्या? इसी प्रकार अर्जुन एक ऐसा बांध है जो स्थान स्थान पर मेरी जीवन सत्ता को अवरुद्ध कर देना चाहता है। तुम यह कभी जान नहीं पाओगे वृषाली। फिर वे मुझको अपनी और अर्जुन की दुशाला में भी प्रथम भेद का वृत्तांत सुनाते और अंत में कहते, हम दोनों के बीच एक स्याह काले भुजंग की कुंडली आकाश से एक गरुण के पैरों से छूट कर गिर पड़ी। यह सुनते समय हर बार मेरी तय भैंस बुरी तरह रोमांचित हो जाती। उनकी स्मृति को सुनते समय रह रहकर मेरा स्त्री मन यह सोचने लगता कि भुजंग निश्चय भावी अशुभ घटनाओं का सूचक एक अपशकुन था, लेकिन मैं एक वीर स्त्री हूँ यह सोचकर मैं उस विचार को क्षण भर में भुला देती। राजमाता कुंती देवी सुरक्षित है यह जानकर मुझको आनंद हुआ। महाराज वीर राजमाता का नितान आदर करते थे। वे सदैव कहते, मेरा विरोध अर्जुन से है, उनकी सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली वीरता से है, उसके भाइयों से, या मेरी माँ शत्रुता उसकी माँ से नहीं है। पांडव सुरक्षित है, इस समाचार से हस्तिनापुर में आनंद की लहर दौड़ गई थी। नगरजन तो उनके लौटने के संबंध में आपस में पूछताछ करने लगे थे। उनके सुरक्षित होने से मेरे मन का भी एक पनाह सुखी हो गया था। सच पूछो तो प्रत्येक स्त्री तो यह चाहती ही है, लेकिन युवराज अर्जुन को क्षमा करने को मेरा मन तैयार नहीं था। 5. महाराज को कलिंग देश गए हुए 3 सप्ताह हो चुके थे। अंत में वह 1 माह बाद युवराज दुर्योधन का निजी विश्वस्त दूत प्रबंधन काशीपुर की सविस्तार सूचनाएं लेकर हस्तिनापुर आया। उसके मुख से उन सब घटनाओं का वृत्तांत सुनते समय मेरे मन में अनेक भावनाओं का संगम हो रहा था। प्रबंधन ने जो कुछ कहा था उसको आद्यतन सुनकर अपने पति के शौर्य औदार्य और मित्र प्रेम पर मुझको अत्यंत गर्व होने लगा। कलिंगों के युवरागी के स्वयंवर के लिए देश देश के राजा काशीपुर में एकत्रित हुए थे। वह काशीपुर हस्तिनापुर के एकदम पूर्व में तक सैकड़ों योजन दूर था। वहां से कुछ योजन दूर ही पूर्व समुद्र था। इतने दूर के राज्य में सभी पराक्रमी राजागण राजकन्या भानुमति के सौंदर्य के खाते सुनकर ही एकत्रित हुए थे। और मजराज सुंदर श्रृंगार कृत शिशुपाल दंडधर आदि अनेक पराक्रमी नरश्रेष्ठ थे। स्वयंवर के लिए किसी प्रकार की शर्त नहीं रखी गई थी। युवराज भानुमति हाथ में वरमाला लेकर स्वयंवर मंडप में घूमने वाली थी। जिस किसी को वह अपना पति योग्य समझती उसके गले वरमाला डालकर उसके चरणों पर अपना जीवन पुष्प अर्पण करने वाली थी। जैसे ही सर्व आमंत्रित राजाओं से स्वयंवर मंडप पूर्ण हुआ वैसे ही पूर्व योजना अनुसार हाथ में वरमाला लेकर वह मंडप में आई। सबसे पहले राजा शिशुपाल था, उस पर एक उड़ती हुई दृष्टि डालकर वह आगे बढ़ गई। उसके बाद श्रृंगाल था, उसको भी उसने अस्वीकृत कर दिया। उसके सामने से वह राजा दंडधर के आगे जाकर खड़े हुए, परंतु उसके आरक्त नेत्रों के कारण उसने उसको भी नहीं चुना। उसके बाद मगध के विशाल का राजा जरासंध का आसन था, परंतु भानुमति ने उसको भी स्वीकार नहीं किया। 5वां आसन पर राजा दुर्योधन थे, उनके पीछे मेरे पतिदेव खड़े थे। दुर्योधन के सामने आते ही भानुमति ने सिर उठाकर उनकी ओर देखा और क्षण भर में उसकी दृष्टि उनके पीछे खड़े हुए मेरे सर्वस्त्र पर पड़ी। वह एकटक उनकी ओर देखने लगे। यह देखकर युवराज दुर्योधन तत्क्षण आसन से उठे और कुछ समझ पाए। इससे पहले उन्होंने भानुमति को सुकोमल कटी को अपने सशक्त भुजा में दृढ़ता से भरकर उसको अचानक उठाकर अपने कंधों पर रख लिया था। उसको लक्ष्य कर वे चिल्लाए, पहले पितामह भीष्म काशीराज से मेरे जैसे मेरी महामाता को उठाकर ले गए थे, वैसे ही आज मैं अपनी भुजाओं के बल पर कलिंग की राजकन्या को उठाकर ले जा रहा हूँ। किसी में सामर्थ्य तो वह कुरुओं के राजदंड से दो दो हाथ कर ले। सभी राजाओं के खड़े हो गए। मंडप के प्रवेश द्वार के पास खड़े हुए दो चार राजाओं को एक हाथ से अलग हटाते हुए तथा दूसरे हाथ से गदा फिराते हुए युवराज दुर्योधन चपलता से प्रवेश द्वार से बाहर निकले। सत्यसेन दादा ने रथ प्रवेश द्वार के पास खड़ा कर ही रखा था, पलक जब मारते ही युवराज हाथ पैर पटकते हुए भानुमति को फूल की तरह उसमें आहिस्ता से चढ़ गए। सत्यसेन दादा ने रथ के घोड़ों पर कशाघात किया, उनका पीछा करने के लिए कुछ राजागण क्रुद्ध होकर प्रवेश द्वार की ओर दौड़े, लेकिन प्रवेश द्वार पर अंगराज ने आगे बढ़कर पहले ही रोक रखा था। प्रवेश द्वार पर महाराज को देखते शिशुपाल चिल्लाया, अंगराज कर्ण द्वार से दूर उठो, यह समस्त क्षत्रियों का घोर अपमान है। शिशुपाल तुम सब क्षत्रिय हो तो फिर अपने राजा दुर्योधन के इस मित्र से सूत पुत्र कर्ण से दो दो हाथ कर लो। ध्यान रखो, राजा दुर्योधन कर्ण के म्यान में रखा हुआ कुरुओं का भारी खड्ग है, खड्ग को हाथ लगाने से पहले साहस हो तो म्यान को दूर करो। शिशुपाल के साथ क्रत श्रृंगार आदि 10 राजा एक साथ महाराज पर टूट पड़े। स्वयं प्रभंजन महाराज के पीछे खड़ा होकर उनका आवश्यक बाण निरंतर देता रहा। महाराज के धनुष से छूटे हुए बाणों ने उन दसों को ऐसे ढक लिया जैसे कोहरा नदी को ढक लेता है। घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। शिशुपाल के साथ सभी लोग अकेले महाराज पर बाण फेंकने लगे, परंतु उनके बाणों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था क्योंकि महाराज की त्वचा अभेद्य थी। बाण फेंकते फेंकते सभी श्रांत हो गए, एक भी राजा प्रवेश द्वार की ओर तिल भर भी नहीं आगे बढ़ सका। उल्टे महाराज के अमोघ बाणों से दंडधर और श्रृंगार को प्राणांतक चोटें आईं। एक घड़ी के बाद शिशुपाल के ध्यान में सब बातें आईं। जो जलाकर हस्तस्थ धनुष फेंक कर वह चिल्लाया, अरे देह पर जन्मजात अवैध कवच धारण करने वाला अंगराज कर्ण है यह, इसको यदि तीक्ष्ण शस्त्र भी काटा चाहोगे तो नहीं कटेगा। दुराग्य तो अब सदैव के लिए चली ही गई, मित्रों कम से कम प्राण तो मत गवाओ। सभी राजा चीख पड़े जैसे विशाला भुजंग डस गया हो। फिर सब स्तब्ध हो गए, सभी की मुख मुद्राएं म्लान हो गई। उन्मत्त हाथी की तरह विशाल शरीर वाला जरासंध धनुष फेंक कर सीधा आगे घुस गया और दंड पर हथेली से ताल ठोंक कर चुनौती देता हुआ बोला, अभेद्य कवच की ढाल लेकर लड़ने वाला कपटी कर्ण, मैं मगध का राजा जरासंध उसको द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता। सूत कुल में जन्म लेने वाले और दुर्योधन की छाया में पनपने वाले कुकुरमुत्ते छत्री की कुलवती स्त्रियों को क्या तूने दीनहीन घोड़ियां समझा है कि जब चाहे रथ में जोत दिया जाए? आ नीचे आ। जरासंध यदि वह कवच उतार कर फेंक सकता तो उसको भी इसी समय फेंक कर मैं तुमको दिखा देता कि कवच के बिना भी कर्ण अजय है। छत्री होकर उन्मत्त हो जाने वाले वृषभ पांचाली के स्वयं मशहूर धनुष से कुचले हुए अपने पैरों के पंजों को क्या भूल गया? द्वंद्व युद्ध का अर्थ मृत्यु होता यह सोचकर जीवा चला। सूतपुत्र भगवान शंकर की आराधना करके मैं अजय द्वंद्व योद्धा बना हूँ, यह क्या तुझे याद नहीं? मैं तुझको बातों ही बातों में ऐसे मरोड़ दूंगा जैसे हिरण को अजगर मरोड़ देता है, उसने चुनौती देते हुए फिर ताल ठोके। सब राजाओं ने सांस रोक ली। महाराज ने देह पर पड़ा उत्तरी प्रभंजन के कंधे पर फेंक कर अदरी का फेंटा कसा। उनके कानों के कुंडल तप्त होकर लाल हो गए, शरीर ऐसे फूलने लगा जैसे ज्वार आने पर समुद्र पुल उठता है। दोनों का हृदय थरा देने वाला द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ। स्वयंवर का मंडप द्वंद्व युद्ध का अखाड़ा बन गया। जरासंध ओट चबाता हुआ क्षुधार्थ बाघ की तरह महाराज पर टूट पड़ा, परंतु जैसे कोई विशाल सागर अपने ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करने वाली नौका को पीछे फेंक देता है वैसे रोने उसको सहज दूर फेंक दिया। वह फिर पैंतरा बदल कर चक्कर लगाने लगा, अकारण है चिढ़ाने वाली ताल ठोकने लगा, परंतु 10-15 पलों में ही महाराज ने उसको अपनी भारी जांघों के नीचे दबा दिया। अपने बलवान हाथों की रस्सी की तरह पाश बनाकर उन्हें जरासंध के गले को चारों ओर लपेटना शुरू किया। सांस रोकने के कारण जरासंध की आंखें चढ़ने लगी। वह बाहुकंडक दाव था, उस पकड़ में जरासंध का अंत निश्चित था। स्वयंवर के मंडप से एक क्षत्रिय राजा के बलि चढ़ने वाली थी। जरासंध ने हाथ उठाकर तुरंत सहायता की मांग की, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़ने का साहस नहीं किया। भय से महाराज चित्रांगद का रोम रोम से उठा, लेकिन उनके मन का एक कोना सुखी हो गया था। जिस राज्य में महाराज जैसे बलशाली वीर थे उस पूरे राज्य की उनकी कन्या महारानी बनने वाली थी। तथा एक क्षण आगे बढ़कर उन्होंने मेरे पतिदेव के पैर ही पकड़ लिए। बहुत ही गिड़गिड़ाकर वे बोले, महाराज कर्ण जरासंध शरण में आ गए, उन्हें प्राण दान दो। मगधों की सीमा हमारे राज्य सटी हुई ही है, हमारे उनके संबंध में राज की वैर न हो यही अच्छा है। महाराज ने जरासंध को जीवन दान दिया। बाहुकंटा का बंधन शिथिल हुआ। सबने सोचा कि मुक्त होते ही जरासंध लज्जित होकर अपमान से सिर झुकाकर चुपचाप चला जाएगा, परंतु हुआ ठीक उल्टा। दाव से मुक्त होते ही जरासंध ने महाराज को एकदम आलिंगन में भर लिया। उनका सीधा हाथ अपने हाथ में लेकर उसको ऊंचा उठाता हुआ वह बोला, अंगराज कर्ण आज से मगधों के राजा जरासंध के प्राण प्रिय मित्र हैं। मैं अपने राज्य का मालिनी नगर इस असीम सामर्थ्यशाली द्वंद्व योद्धा को भेंट करने की घोषणा करता हूँ। इनके समान शक्ति संपन्न एक भी कुशल द्वंद्व योद्धा मैंने आज तक नहीं देखा। महाराज ने जरासंध को आलिंगन किया। बातों ही बातों में यह समाचार काशीपुर नगर में फैल गया। नागरिकों के झुंड महाराज के दर्शन को आने राजभवन में आने लगे। महाराज ने चिद्रांगद जी से कहकर युवराज दुर्योधन और युवराज्ञी भानुमति का स्थान ढूंढ निकाला। युवराज्ञी भानुमति को लेकर सभी लोग महानदी किनारे पर रुके हुए महाराज की प्रतीक्षा कर रहे थे। कलें क्या मात्र उनको समस्त वृत्तांत बताकर सम्मानपूर्वक फिर राजभवन लाए। काशीपुर के नगरजन ने युवराज्ञी भानुमति को हस्तिनापुर की महारानी कहकर घोषणा करके विदा किया। बीच बीच में वे अंगराज कर्ण कहकर मेरे पति का विजय जयकार कर रहे थे। नगरजन फूल बरसा रहे थे। उसी समय सबने काशीपुर छोड़ दिया था। प्रभंजन ने चूंकि यह सारी घटना निकट से देखी थी इसलिए उसने मुझको उसका बड़ा सरस वर्णन सुनाया। जो यह समाचार मुझको सुनाने के लिए वह घोड़ा दौड़ाता वह सबसे पहले नगर में आया था। उसने कहा, महारानी जब तक अंगराज हैं तब तक कुरुओं का सिर ऐसे ही ऊँचा रहेगा। नई महारानी के स्वागत की तैयारी कीजिए। अंगराज की पंचारती उतारने के लिए दीप जलाइए।